अनादि निधनम ब्रह्म पढ़ने के बाद अब दूसरी कारिका से आपका पाठ प्रारब्ध होगा। अभी शुरुआत में जो है ना दो चीज़ों पर अभी फोकस होना है। एक तो शब्द ब्रह्म का विवेचन किया जाएगा कारिकाओं में, और दूसरा व्याकरण अध्ययन क्यों किया जाए इसके बारे में भी बताया जाएगा। तो व्याकरण अध्ययन का प्रयोजन आपने महाभाष्य में पशुपसानिक में पढ़ा है पहले, तो वो संस्कार आपके काम आएंगे इसको समझने में। तो चलिए कोई बात नहीं, अब दोनों बातों को जो है ना हम पढ़ेंगे आगे के पाठ में। एक तो शब्द ब्रह्म के बारे में और दूसरा व्याकरण अध्ययन प्रयोजन के बारे में। दूसरी कारिका है पुस्तक में, एकमेव यदाम्नातम भिन्नम शक्ति व्यपाश्रयात अपृथक्त्वेपि शक्तिभ्यः पृथक्त्वे नैव वर्तते। इसका अन्वय अगर करेंगे, अन्वय बहुत कठिन नहीं है। यत एकमेव आम्नातम तत् शक्तिव्यपाश्रयात भिन्नम शक्तिभ्यः अपृथक्त्वे अपि पृथक्त्वेन इव वर्तते। इसका अन्वय लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लगभग अन्वय जैसा किया ही है इसमें कारिका में। अब क्या है कि शब्द तत्व जो है जिसके बारे में आपने पढ़ा है, अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम, वह जो शब्द तत्व है उसके बाद वह शब्द तत्व एक है अथवा अनेक है, ये प्रश्न अगर आपसे किया जाए तो आप पहले जो भी कहते अब ये कहिएगा कि शब्द तत्व जो है वह एक ही होता है। फिर प्रश्न, क्यों शब्द तत्व एक होता है? क्योंकि ब्रह्म एक होता है और शब्द भी ब्रह्म ही है, तो शब्द भी क्या होगा? एक ही होगा। तो ब्रह्म से अभिन्न होने के कारण शब्द तत्व जो है वह भी एक ही होता है। यथा वेदांतिनाम ब्रह्म एकम तथैव अस्माकं वैयाकरणानाम अपि शब्द ब्रह्म एकमेव। तो वैयाकरणों का शब्द ब्रह्म जो है उसी को शब्द तत्व भी कहते हैं। तो आप कुछ भी कह लें, शब्द ब्रह्म कहिए या शब्द तत्व कहिए। तो सवाल अब यहाँ ये उठ रहा है कि शब्द ब्रह्म यदि एक है, शब्द तत्व यदि एक है, तो फिर नाना रूप में जो है ना यह कैसे भासित होता है? अब कहा गया था ना कि अर्थभावेन विवर्तते अनादि निधनम ब्रह्म शब्द तत्वम यदक्षरम विवर्तते अर्थभावेन प्रक्रिया जगतो जतः। तो अर्थभाव में जो है ना ये शब्द तत्व प्रतीत होते हैं, प्रतिभासित होते हैं, विवृत होते हैं। तो अर्थभाव क्या है? तो घटपटादि जो है ना वही अर्थ है। घटपटादि, घट माने घड़ा, पट माने कपड़ा, और आदि तो घड़ा कपड़ा आदि जो है ना यही अर्थ है। और इन अर्थों के रूप में घट शब्द, घट और पट शब्द या इस तरह के और भी जो शब्द हैं वो भाषित होते हैं, प्रतीत होते हैं, ऐसा कहा गया। तो अब यहाँ घटपटादि जो अर्थ है वो तो अनेक है और शब्द तत्व जो है वह एक है। तो सवाल उठना बनता है ना कि जब शब्द तत्व एक है तो फिर घटपटादि अनेकों अर्थों के रूपों में वे शब्द भाषित कैसे होते हैं? नहीं होने चाहिए। तब तो अर्थ, जैसे शब्द तत्व एक है उसी तरह से अर्थ तत्व को भी एक ही होना चाहिए। इसका जवाब इस कारिका में दिया गया है कि एकम एव यत आमनातम, आमनातम माने कथितम, शब्द तत्व को जो एक आमनात किया गया है, एक बोला गया है, एक कहा गया है। आपके मन में उठेगा कि गुरुजी ये कहाँ कहा, तो ऐसा नहीं है। आप देखो पहली वाली कारिका में ये जो कहा ना कि अनादि निधनम, और क्या क्या विशेषण लगाया था शब्द तत्व में? तीन विशेषण लगाए गए थे ना, अनादि निधनम अक्षरम और अनादि निधन अब्रह्मा, ये तीन विशेषण थे ना कि शब्द तत्व जो होता है वो अनादि निधन होता है सब तत्व जो होता है वह अक्षर होता है और शब्द तत्व जो होता है वह भिन्न ब्रह्म होता है। तो अनादि निधन होता है, इसका मतलब मैंने बताया था ना कि अनादि निधन इसलिए कहा जाता है कि नित्य अर्थ को बताने के लिए। फिर अक्षर का अर्थ व्यापक होता है, तो व्यापक भी वही होगा जो नित्य होगा। और ब्रह्म भी जो है ना वह जो है एक ही होता है। तो इस तरह से जो ये जो विशेषण सब लगाए गए ना शब्द तत्व में, ये तमाम विशेषणों के द्वारा शब्द तत्व का एकत्व जो है वह आमनात होता है। शब्द तत्व एक ही है ऐसा जो है ना हमें पता चलता है। इसलिए यहाँ कहा कि एकम एव यत आमनातम, यत शब्द तत्वम एकम आमनातम, जो शब्द तत्व एक रूप से बोला गया कहा गया वह किस आधार पर कहा गया, क्योंकि घटपटादि जो अर्थ हैं वह तो नाना है। तो फिर शब्द उन नाना अर्थों में वो जो शब्द तत्व जो है वह प्रतीत होता है। तो ये कैसे जो है संभव है कि प्रतीत होगा अनेक रूप में और रहेगा वह एक, ये तो मैंने वाक्यपदी के आधार पर बताया। थोड़ा सा अब इससे हट करके अगर हम चलें तो आपने सुना होगा एकमेवा द्वितीयम ब्रह्मा, एकम एव अद्वितीयम ब्रह्मा है। ये जो अब उपनिषद सब अगर पढ़ा होगा आपने या पढ़ेंगे तो वहाँ की ये पंक्ति मिलेगी आपको, एकमेव अद्वितीयम ब्रह्म, वह जो ब्रह्म होता है वह एक ही होता है अद्वितीय होता है। इसी तरह से प्रणव एव एक त्रिधा अभिव्यज्यते, ये भी उपनिषद ही है कि एक ही जो प्रणव है, प्रणव अर्थात ओंकार है, वह त्रिधा अभिव्यज्यते, वो तीन प्रकार से जो है अभिव्यक्त होता है। तो इस तरह से श्रुति में वेद में जो है शब्द तत्व को एक बताया गया है। और यहाँ पर भी जो है अनादि निधनम ब्रह्म में भी जो है शब्द तत्व को एक ही कहा गया है। तो यह जो एक कहा गया उसके पीछे क्या हेतु है, तो बताते हैं कि शक्ति व्यपाश्रयात्, कि शक्ति के व्यपाश्रय होने के कारण भिन्न भिन्न रूप में भाषित होने पर भी शब्द तत्व जो है वह एक होता है। अब आपके मन में आ रहा होगा कि ये शक्ति का व्यपाश्रय क्या है, तो व्यपाश्रय का अर्थ होता है आश्रय, और शक्ति तो थोड़ा बहुत जानते ही हैं क्योंकि शक्ति के आश्रित होने के कारण, शक्ति का आश्रय होने के कारण शक्ति व्यपाश्रयात्, व्यपाश्रय माने आश्रय, तो शक्ति का आश्रय होने के कारण शब्द तत्व जो है वह एक माना जाता है। अब अभी बहुत क्लियर नहीं होगा तो क्लियर कर लीजिए। असल में है क्या कि शब्द तत्व तो एक है, लेकिन शब्द तत्व की जो शक्तियां हैं, शब्द ब्रह्म की जो शक्तियां हैं वो भिन्न भिन्न होती हैं। तो भिन्न भिन्न शक्तियों के होने के कारण भी शब्द जो है वह भिन्न भिन्न नहीं होता। क्यों कैसे, तो आगे कहते हैं अपृथक्त्वेपि शक्ति शक्तिभ्यः पृथक्त्वेन इव वर्तते, कहा कि इन शक्तियों के कारण ही जो है वह एक रहने वाला शब्द अनेक रूप में प्रतीत होता है। वास्तव में वह शब्द तत्व जो है वह अनेक नहीं है, वह एक ही है। फिर जब एक ही है तो भाषित क्यों अनेक रूप में होता है, तो शक्ति व्यपाश्रयात्, वो शक्ति के कारण ऐसा होता है, क्योंकि शब्द शक्ति जो है वह अनेक होती है। और उन शक्ति को निष्कर्ष क्या निकला कि शब्द तो एक है लेकिन शब्द की शक्तियाँ अनेक हैं, और शब्द की शक्तियाँ चूंकि अनेक हैं इसीलिए एक शब्द होकर के भी अनेक रूप में वह प्रतीत होता है, वह भाषित होता है। फिर से एक बार पंक्ति देख लीजिए, एकम एव यत आमनातम, एक जो शब्द तत्व आमनात है माने कथित है, बोला गया है, वह भिन्नम, वह भिन्न रूप में प्रतीत होता है। क्यों, तो शक्ति व्यपाश्रयात, शक्ति के आश्रय के कारण। माने शक्ति के कारण। शक्ति के कारण क्यों? क्योंकि शक्ति नाना होती है, इसीलिए एक जो शब्द तत्व है वह भी नाना प्रतीत होता है। अपृथक्त्वे अपि माने अभिन्नत्वे अपि, उसमें शब्द तत्व में कोई भिन्नता नहीं है, कोई पृथक्त्व नहीं है। पृथक्त्व माने भिन्नता, अपृथक्त्व मतलब अभिन्नता। तो उस शब्द तत्व में अपृथक्त्व है, अभिन्नत्व है, फिर भी शक्तिभ्यः माने शक्तियों के कारण पृथक्त्वेन इव वर्तते, भिन्नता से ही जो है वह वर्तते माने प्रतीतो भवति, प्रतिभासितो भवति। ठीक है, तो एक जो शब्द तत्व वह भिन्न रूप में प्रतीत होता है शक्ति के आश्रय के कारण, क्योंकि शक्तियाँ अनेक होती हैं, इसीलिए उन शक्तियों के कारण, शक्ति उन शक्तियों का आश्रय चूंकि शब्द है, इसीलिए शब्द भी अनेक रूप में प्रतीत होता है। किंतु वास्तव में शक्ति शब्द में अपृथक्त्व है, शब्द में अभिन्नत्व है, अभिन्नता है, शब्द तत्व एक ही है, किंतु वो शक्तियों के कारण, शक्तियों का आश्रय होने के कारण वह पृथक्त्वेन इव वर्तते, वह पृथक पृथक प्रतीत होता है, भिन्न भिन्न प्रतीत होता है। इस तरह से ये जो दूसरी कारिका है उसको आपने पढ़ा, इसको एक उदाहरण के द्वारा अगर आप समझना चाहें तो जैसे मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, अनेक प्रकार के बर्तन होते हैं, जैसे घड़ा होता है, कलश होता है, सुराही होती है, दिए बनते हैं, बहुत सारे बर्तन होते हैं मिट्टी के। तो अगर उनके नामों पर हम जाएंगे तो कहेंगे कि ये घड़ा है, ये कलश है, ये दिया है, ये सुराही है, तो इस तरह से तो वो भिन्न भिन्न है। लेकिन उसके कारण में जब हम जाएंगे तो सबका कारण क्या है? एक ही कारण है, मिट्टी। तो सबका कारण तो एक ही है ना, तो मिट्टी तो अनेक नहीं है, लेकिन मिट्टी से बने हुए बर्तन अनेक होते हैं। तो उसी जैसे मिट्टी एक होते हुए भी बर्तनों के रूप में अनेक तरह से भासित होता है, उसी तरह से जितने भी अर्थ हैं उसका मूल कारण है शब्द, वह शब्द एक ही है, फिर भी नाना अर्थ के रूप में वह प्रतीत होता है। इस तरह से उदाहरण के द्वारा आप इस कारिका को समझ सकते हैं और सीख सकते हैं। अब तीसरी कारिका जो, अच्छा ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये समझते हुए पढ़ा रहा हूँ कि आप लोगों को ये कारिकाएं याद हैं। आपने को मैंने कहा था 20-20 कारिकाएं याद करने के लिए शुरू के, तो लेकिन मैंने पूछा नहीं कि आपने याद किया कि नहीं, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने किया होगा। तो तीसरी कारिका का मैं उच्चारण करके आज का पाठ यही स्थगित करूंगा। अव्याहता कलायस्य कालशक्तिम उपाश्रिता जन्मादयो विकारा सद्भाव भेदस्य योनयः। ऐसे इसका मैं सामान्य अर्थ अभी कर देता हूँ और इसका विवेचन जो है अगले पाठ में करूँगा। कहा कि यस्य कलाः अव्याहताः, यस्य शब्दस्य अर्थात यस्य शब्द ब्रह्मण, वह जो शब्द ब्रह्म है उसकी जो कलाएं हैं वो अव्याहत हैं। यहाँ पर कला का अर्थ लेना है शक्ति, कि शब्द की जो शक्तियाँ हैं वो अव्याहत होती हैं, वो विनष्ट नहीं होती हैं, शब्द की शक्तियाँ जो हैं वो कभी नाश से युक्त नहीं होती हैं। और वो जो शब्द की शक्तियाँ हैं वो किस पर आश्रित रहती हैं? तो काल शक्तिम उपाश्रिता, शब्द की शक्तियाँ जो हैं वो काल शक्ति पर आश्रित होती है। देखो इसका क्रम समझो, काल शक्ति में रहती है शब्द शक्ति, और शब्द शक्ति जो है वह शब्द में रहती है। फिर से एक बार सुन लो, काल शक्ति में शब्द शक्ति रहती है और शब्द शक्ति जो है वह शब्द में रहती है। तो यहाँ कहा कि यस्य कलाः अव्याहताः, माने यस्य शब्दस्य शब्द तत्वस्य अथवा शब्द ब्रह्मणः, वह जो शब्द ब्रह्म है उसकी जो कला है अर्थात उसकी जो शक्ति है वह अव्याहत होती है। व्याहत कहते हैं नष्ट को और अव्याहत कहते हैं अविनष्ट को, अर्थात वह नष्ट नहीं होती है। और वह किस पर आश्रित रहती हैं वो शब्द शक्तियाँ? तो काल शक्ति उपासिता, काल शक्ति पर जो है वह आश्रित रहती है। फिर जन्मादयो विकाराहा सद्भाव योनयः। और उसी काल शक्ति के कारण ही जो है ये जितने भी अर्थ हैं, ये जितना भी संसार है, उसमें जन्मादयो विकाराहा, ये जन्म आदि विकार अर्थात परिवर्तन ये होता रहता है। जितने भी परिवर्तन होते हैं, बच्चा आज जन्म लेता है, फिर जा करके जवान होता है, बुढ़ा होता है, मर जाता है, ये सब क्या है? ये सब जन्म आदि विकार है। ये तो जन्मादि विकार जो होते हैं वो काल शक्ति के कारण ही हुआ करते हैं। और ये विकार कितने हैं? तो सद्भाव भेदस्या, ये छह प्रकार के जन्म आदि विकार होते हैं। और इन सब जन्म आदि विकारों का कारण जो है वह काल शक्ति ही है। काल शक्ति के कारण ही ये जो है ये छह प्रकार का विकार होता है। अब ये छह प्रकार के विकार कौन है? तो इसको कहेंगे जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, ह्रास और नाश। एक बार फिर से बोलता हूँ, जन्म, स्थिति, वृद्धि, परिणाम, ह्रास और नाश। इस तरह से ये जो छह विकार हैं, ये विकार होते हैं किसके कारण? काल शक्ति के कारण। और इस काल शक्ति में शब्द शक्ति रहती है, और शब्द शक्ति जो है वह शब्द में रहता है। इस तरह से ये जो जन्म आदि छह प्रकार के विकार हैं, उसका भी कारण जो है ये शब्द तत्व हो गया। क्योंकि काल शक्ति तो साक्षात कारण है, और काल शक्ति जो है उसमें शब्द शक्ति रहती है, और शब्द शक्ति शब्द में रहती है। इस तरह से शब्द भी जो है परंपरा इन छह प्रकार के विकारों का कारण होती है। आज का पाठ यहीं स्थगित करते हैं।